समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। अवसर पर राष्ट्रीय प्रेस परिषद द्वारा घोषणा की गई है, हमारा समाचार पत्र स्वतंत्रता, निष्पक्ष तथा नैतिक पत्रकारिता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराता है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय प्रेस द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस वर्ष समारोह बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच विश्वसनीयता की रक्षा विषय पर आधारित है।
Well, yes, National Press Day. It is being observed today. Let's go down the memory lane. It marks the day the Press Council of India, or PCI, began its operations in 1966 and established as an independent body. The PCI's, Press Council of India's, primary role is to ensure that the press maintains high standards of journalism while remaining free from external influences. So the idea for the council was first proposed by the first press commission in 1956, Jaya, and this day it symbolizes a free and responsible press central to democracy. It is commemorated through various activities, including the National Awards for Excellence in Journalism and the release of a souvenir.
बिल्कुल, किसी देश की प्रेस का स्वतंत्र और जिम्मेदार होकर काम करना बेहद जरूरी होता है। तो प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आपका अपना प्रोग्राम आज सवेरे, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और शगुन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम ऑल आवर लिसनर्स। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड well, I would like to take a moment and also add that the media is often referred to as the fourth pillar of democracy, right, Jaya? Hmm. Playing a crucial role in shaping public opinion, also driving development and holding power to account. So, as a powerful tool for progress, it is essential that the press remains free from bias and upholds its duty to inform and educate the masses. So, for years, media has been at the forefront, safeguarding the interests of millions and fostering transparency. And that's why, let us tell our listeners to recognize this vital contribution. National Press Day is celebrated every year. Today, it's November 16th. So, let's begin with the headlines.
बिल्कुल, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सरकार गठन की प्रक्रिया के बारे में कहा कि दो दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सरकार के 29 मंत्रियों में से 28 को जीत हासिल हुई है। भाजपा कोटे के 17 मंत्रियों को जीत हासिल हुई है। इस बार के चुनाव में जीत का सबसे बड़ा अंतर पूर्णिया में रहा, जहां रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के कलाधर मंडल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीमा भारती को 73,500 मतों के अंतर से पराजित किया। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर जीत और हार का अंतर मात्र 27 वोट का रहा। यहां कांटे की टक्कर में जनता दल यूनाइटेड के राधा चरण साह ने दीपू सिंह को हराया। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछली बार 2020 में 75 सीटें जीती थी, उसे इस बार 50 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 13 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी, वह इस बार खाता भी नहीं खोल पाई है। इस बार 28 महिला उम्मीदवार विधानसभा के लिए चुनी गई है। इसमें सबसे अधिक 10 महिला प्रत्याशियों ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
The Delhi Crime Branch has filed two separate FIRs against Al-Falah University, one for cheating and the other under sections of forgery. According to a Delhi police source, a team from the Crime Branch unit visited the university office in Okhla in the national capital yesterday. The Delhi police has also issued a notice to the university and requested certain documents from them. It said the FIRs were registered after University Grants Commission or UGC and the National Assessment and Accreditation Council flagged serious irregularities at the university during the reviews. The source mentioned that the first FIR has been lodged for violations under Section 12, while the second FIR pertains to alleged false accreditation claims made by the university.
केरल में प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर पवित्र मंडला मकरावेल्लको तीर्थ के लिए आज खुल जाएगा। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु के पहुंचने और आध्यात्मिक ज्ञान लेने की उम्मीद है। मंदिर खुलने की अंतिम तैयारी जारी है।
The Indian Air Force or IAF will participate in the 8th edition of the bilateral air exercise. This exercise is Garud 25 in France from today. So Indian Air Force will conduct this exercise with the French airspace and space force till 27th of this month. The Ministry of Defence said that this exercise aims to refine tactics and procedures in a realistic operational environment. The ministry added that it also provides an opportunity for professional interaction, exchange of operational knowledge and sharing of best practices between the two air forces, the French one and ours, Indian Air Force. During the exercise, the Indian Air Force's Su-30 MKI aircraft will operate alongside the French multi-role fighters in complex simulated air combat scenarios, focusing on air-to-air combat, air defense and joint strike operations. Well, now, we will tell our listeners about a major step toward expanding frontier tourism. So, Sikkim government has announced that the strategically sensitive sites of Doklam and Chola will be open to tourists by December 15 this year. The decision marks the first time civilians will be allowed to access to these high security border zones. The sites were originally scheduled for inauguration on 27 September, but the plan was delayed due to administrative and logistical hurdles. Speaking to reporters, C.S. Rao, Sikkim's additional chief secretary for tourism, confirmed that preparations are now in their final phase. By opening these previously restricted regions, the Sikkim government aims to promote adventure and heritage tourism, and for that, we also have a detailed report.
The Sikkim government is preparing to open Chola and Doklam under the Battlefield Tourism Initiative of the Defense Ministry. After the 8 years of standoff between India and Chinese troops, Doklam will be open for tourists. This place is located at nearly 14,000 feet altitude and nearly 70 kilometers away from capital Gangtok. On the other hand, Chola is a must visit for history buffs, adventure and natural lovers for its captivating landscapes and rich heritage. Chola is primarily being known for the clan between the Indian and Chinese troops in 1967. The Sikkim government and the army are developing these places to welcome tourists by next month. However, government will only allow limited number of vehicles and bikers daily with specific do's and don'ts instructions while visiting both the places. Manas Patim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
Aur shrotaon ab baat khelon ki. Drishtibadhit Mahila T20 क्रिकेट विश्व कप अपने निर्णायक चरण में प्रवेश करने जा रहा है। आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम अमेरिका पर 10 विकेट से मिली शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है। यह टूर्नामेंट में उसकी लगातार चौथी जीत है। सेमीफाइनल 22 नवम्बर को और फाइनल 23 नवम्बर को खेला जाएगा। क्रिकेट से और एक खबर हम बात कर लेते हैं, जहां कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में कल के स्कोर 7 विकेट पर 93 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक कप्तान टिम्बा बाउमा 29 और कोरबिन बॉस 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। दक्षिण अफ्रीका को भारत पर अब तक 63 रन की बढ़त मिल चुकी है। इससे पहले कल भारत की पहली पारी 189 रन पर सिमटी थी। केएल राहुल ने भारत की ओर से सबसे अधिक 39 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए।
Now let us tell our listeners about World Boxing Finals. So Greater Noida is set to host the World Boxing Cup Finals scheduled from today to November 20 at Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex. So the World Cup Finals is the season finale of World Boxing Cup Series 2025, following the three World Cup stages held earlier in Brazil, Poland and Kazakhstan. The event will have 133 boxers from 18 countries, featuring the 8 best boxers of the year in each of the 20 categories. So, India is competing in all 20 categories. As host, will field the world champions like Meenakshi, Nikhat Zareen, Jasmine and Saviti Bora. So, Saviti is making her comeback for the first time this year, as Lovlina Borgohain has decided to withdraw from the tournament, citing an injury. So, India will aim to win a few medals in men's boxing also from Abhinav Jamwal and Hitesh, who had 2 medals each at this year's World Cup circuit.
और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल. सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से.
So, a manager of HDFC Bank's Velachery branch was arrested for stealing gold and cash from a locker belonging to an NRI customer. Central Crime Branch personnel arrested S. Venkatesh, who was in charge of the bank's locker vault, on charges of accessing the locker without authorization and taking jewellery and cash worth more than 21 lakh rupees. So, the customer, a resident of US, had given locker access to her mother for routine operations. So during a recent inspection, her family discovered that 238 grams of gold was missing. So a complaint was lodged by the woman's brother. So the police registered a case and formed a special team to probe the incident. One more update from Chennai. The Office of the Registrar General and Census Commissioner had earlier announced the commencement of the conduct of pre-test for the forthcoming Census of India 2027 in the selected samples across all states. So, in Tamil Nadu, the pre-test exercise was decided to be conducted in 3 charges, 2 rural charges and 1 urban charge. Accordingly, the Directorate of Census Operations Tamil Nadu, in consultation with the state government, had identified that Achetti Taluk of Krishnanagari district, RKP Taluk of Tiruvallur district and also Mangadu municipality of Kanchipuram district for the execution of this pre-test exercise.
और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है. यह पोर्टल नागरिकों को घर बैठे पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से अपना फायर सर्टिफिकेट नवीनीकृत कराने की सुविधा प्रदान करेगा. साथ ही इस पोर्टल पर आवेदन की प्रत्येक स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के फायर विभाग में लगातार कई बदलाव किए जा रहे हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने की दिशा में फायर विभाग की यह पहल सराहनीय है. उन्होंने कहा कि पहले फायर सर्टिफिकेट के नवीनीकरण में लोगों को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता था, अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री ने कल अपने विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यह योजना राजधानी के 100 स्थानों पर प्रारंभ की जाएगी और इस कैंटीन की खास बात यह है कि नागरिकों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
Now, let's head to Bengaluru. The special cell of the Cyber Command and the Cyber Crime Police Station of Whitefield in Bengaluru have busted a fraudulent software company involving in cheating US citizens by impersonating as Microsoft technical support personnel. Based on credible information, the police raided the Musk Communications operating near Varthurkodi in Whitefield. So, the Cyber Command technical team, cyber security analysts and officers from cyber crime police stations led by DGP Cyber Command Unit Dr. Pranab Mohanty conducted the operation yesterday, and they apprehended 21 employees of the company actively involved in cheating foreign nationals by posing as Microsoft support technicians.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आगामी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र रविवार यानी आज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों की छुट्टी वाले दिन रविवार 16 नवम्बर को भी उपलब्ध रहने और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। नामांकन पत्र और शपथ पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक यानी कल 3 बजे तक है। वरिष्ठ गजल गायक भीमराव पंचाले को विट्ठल उमा फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित मृदगन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 26 नवंबर को लोक शाहिर विट्ठल उमा की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित 15वें लोक शाहिर विट्ठल उमा स्मृति संगीत समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। फाउंडेशन ने विभिन्न श्रेणियों में मृदगंध पुरस्कार 2025 के विजेताओं की भी घोषणा की है।
Now we will focus on Hyderabad. The Department of Posts Telangana Circle has released two special postal covers commemorating Janjatiya Gaurav Divas last evening, coinciding with the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, the revered tribal freedom fighter. The special cover depicts major tribal dances, for example, Banjara dance, Chenchu dance, and Kulattam. So these dances were performed to traditional instruments like rabab, dhol, reflecting the rhythmic beauty and diversity of tribal culture. Another cover featured rich musical tradition expressed through three types of indigenous instruments as well.
तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। बात मुंबई की, आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की तरह सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में भी आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
Well, Jaya, Chennai is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have, again, partly cloudy sky. Minimum temperature was 17 degrees Celsius, maximum will be around 28 degrees. Hyderabad, again, partly cloudy sky and there is a possibility that there will be haze. The temperature, minimum temperature, will be around 14 degrees Celsius and maximum around 28 degrees Celsius. And now let's talk about why 16th of November is special for other reasons as well. So International Day of for Tolerance is being observed today globally. In 1996, the UN General Assembly adopted a resolution proclaiming 16th of November as International Day for Tolerance. So this action followed the adoption of a Declaration of Principles on Tolerance by UNESCO's member states on this date. And, well, we have to respect and for the appreciation of the rich variety of our world's culture, our forms of expressions and ways of being humans. So this is with respect to that. And tolerance recognizes the universal human rights and fundamental freedom of others.
बिल्कुल, और यह दिन लोगों को शांतिपूर्ण और समावेशी समुदाय बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां विविधता का सम्मान किया जाता है। और शगुन, हम जानते हैं कि भारत में कितनी विविधताएं हैं, फिर भी उनका सम्मान करके जिस तरह से एकता बनी हुई है, ये उसी का प्रतीक है। यह केवल उदासीनता नहीं है बल्कि दूसरों की मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को पहचानने और उनके सम्मान करने के बारे में भी है।
यस, ऑल्सो द वर्ल्ड डे of remembrance for road traffic victims, it is being observed today, and this was started by Road Peace in the year 1993, and in 2005 the United Nations endorsed it as a global day to be observed every third Sunday in November each year, and as the appropriate acknowledgement for victims of road traffic injuries and their families. And of course, road traffic is we have to keep in focus that it's not the speed that matters, it is what the your well-being that matters the most.
बिल्कुल, सतर्क रहने की जरूरत है, हम कह सकते हैं सतर्कता जरूरी है। और श्रोताओं, अब आज का दिन और किस लिए खास है, किस लिए याद किया जाता है, उसके लिए चलते हैं अतीत के उस पार और उन प्रमुख घटनाओं को याद करते हैं। आज 16 नवंबर 2025 है और आज ही के दिन 1713 में छत्रपति शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ के कार्यालय में पेशवा पद का महत्व बहुत बढ़ गया था। उन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साम्राज्य को एकजुट किया और प्रशासन को मजबूत किया।
So in 1776, British troops captured strategically placed Fort Washington during the American Revolution. In 1840, New Zealand officially became a British colony.
और 1908 में जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी। वहीं 1958 में भारत और सोवियत संघ ने मॉस्को में कृषि वस्तुओं को के बदले सोवियत औद्योगिक और कृषि उपकरणों के आदान प्रदान के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
In 1915, the British executed Shahid Kartar Singh Sarabha, who was a young freedom fighter. The judge pronounced him the most dangerous of all rebels and observed that since he is very proud of the crimes committed by him, he does not deserve any mercy and should be sentenced to death. And so on this day, Kartar Singh Sarabha walked to the gallows with a smile on his lips and twinkle in the eyes and singing patriotic songs he had composed. Also, a Punjabi novelist, Nanak Singh, wrote a novel titled Ik Mia Do Talwara based on his life, and India always cherishes, will always keep cherishing the memory of its hero, Shahid Kartar Singh Sarabha. Now, in 1945, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization was founded.
And 1975 mein Papua New Guinea ne Australia se swatantrata hasil ki thi. वहीं 1995 की बात करें तो भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने 2001 तक इस पद पर कार्य किया था।
In 1992, the Supreme Court of India delivered its judgment in the Indra Sohoni case. The judgment is considered as landmark decision regarding affirmative action policies in the country. In 2001, British author J.K. Rowling's star creation Harry Potter made its big screen debut in Harry Potter and the Sorcerer's Stone, which opened in movie theaters across the United States.
और वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान एक के लूनर लेजर रेजिंग उपकरण ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया था। यह भारत का पहला चंद्र मिशन है जो उपकरण चंद्रमा की सतह से लेजर की किरणें भेजकर उससे परावर्तित होकर लौटने वाली किरणों का विश्लेषण करके पृथ्वी से उसकी दूरी और टोपोग्राफी को मापता है। और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह साराभा को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें अपने शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। साराभा ने लाहौर, फिरोजपुर, लायलपुर और अमृतसर आदि छावनियों में घूम घूमकर पंजाबी सैनिकों को संगठित करके उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उन्होंने केवल 19 वर्ष की आयु में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि आज के युवक साराभा के बताए हुए मार्ग पर चले तो न केवल अपना बल्कि देश का भी मस्तक ऊंचा कर सकते हैं।
Listeners, today we are also remembering M.N. Srinivas, sociologist and social anthropologist. So the sociological imagination is a powerful tool in capturing and understanding social reality. And M.N. Srinivas made a major contribution to establish sociology in newly independent India. As a pioneering architect of Indian sociology and anthropology, Srinivas was the founder of three prominent sociology departments, well, in Baroda, in Delhi and Bengaluru. So, teacher and patron of more than a generation of sociologists and anthropologists and the creator of widely used concepts such as Sanskritization and vote banks. Also, his favorite themes were mobility and change.
आज ही पुण्यतिथि है वीरांगना उदा देवी की, जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से भाग लिया। दलित समुदाय से आने वाली उदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी। लेखक राजकुमार इतिहासकार कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को गदर हुआ था। वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर मारा था। हालांकि इस लड़ाई में काफी देर तक संघर्ष के बाद उदा देवी भी शहीद हो गई।
Listeners, we are also remembering today Edward Albert Arthur Woodward, actor and a singer. So he won critical acclaim both as a stage and a television performer and top-selling record artist and also a film actor, occasional film actor, I should say. Woodward first made himself as a prominent stage actor, performing for various repertory companies through the British Isles. And after making his London stage debut in Where There Is a Will, he began to branch out into film and television. And let's now listen to his voice and the song which we will play. This is Smile.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
आज जयंती है भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार श्रीराम लागू की। महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मे श्रीराम लागू फिल्मों में आने से पहले पेशे से डॉक्टर थे। डॉक्टर लागू को एक्टिंग का शौक मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही लग गया था। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी।
एक जमाने में मैं डॉक्टर था, वो मेडिसिन का था, मैं नाक कान गले का सर्जन था। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस साल मैं मेडिकल कॉलेज में गया मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए, उसी साल से मैंने थिएटर शुरू किया था। बस थिएटर का शौक था, वैसे बचपन से ही शौक था, तो सोचा चले अब कॉलेज में ड्रामा भी शुरू हो जाए।
डॉक्टर लागू ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी, जैसा कि उन्होंने बताया। 1971 में आई आहट एक अजीब कहानी से हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी। अपने करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए, 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया। सिनेमा के अलावा मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से भी जुड़े रहे। श्रीराम ने 20 से अधिक मराठी नाटकों का भी निर्देशन किया। अपने कार्यों के लिए उन्हें 1978 में फिल्म फेयर पुरस्कार और 2010 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिला। वहीं उन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
Now we will tell you about the composer who changed the course of popular music by integrating blues idiom. So music enthusiasts, they call him father of blues, W.C. Handy. So going against family tradition, he began to cultivate his interest. W.C. Handy became, he cultivated his interest in music at a very young age and learned to play several instruments. So this is also an inspiring thing that children, they should start learning. In like when they are children, they should start to play instruments. That's really great for their overall holistic education and their overall development. So, and the instruments that included that he knew how to play were organ, piano, and guitar.
White, bright, blessed days, dark, sacred nights, and I think to myself, what a
हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु और नर्तक सम्राट शंभू महाराज को। आज उनकी जयंती है। लखनऊ घराने के शंभू महाराज का वास्तविक नाम शंभूनाथ मिश्रा था। नृत्य कला उन्हें विरासत में मिली थी। शंभू महाराज नृत्य के संग ठुमरी गाकर उसके भाव को विभिन्न प्रकार से इस अदा से प्रदर्शित करते थे कि दर्शक मुग्ध हुए बिना रह नहीं सकता। शंभू जी का मानना था कि भाव विहीन लय ताल प्रधान नृत्य मात्र एक चमत्कार पूर्ण तमाशा हो सकता है, नृत्य नहीं हो सकता। शंभू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पद्मश्री से अलंकृत किया गया था।
How beautiful. Listeners, today we are also remembering Gulshan Nanda, the best-selling novelist and Bollywood's go-to storyteller in 1960s. He wrote family dramas shot through with suspense. And this song that we are playing, this is from one of his creations only. He wrote the novel for it and then it was adapted into a film. This is from Kati Patang.
आज जयंती है तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी की। उनकी क्लासिक या कहीं तेलुगु सिनेमा की क्लासिक फिल्म थी मल्लेश्वरी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। सुनते हैं इस फिल्म का एक गाना।
పరుగులు తీయాలి, ఒకిద్దలు రకలు వేయాలి. హే పరుగులు తీయాలి, ఒకిద్దలు రకలు వేయాలి.
श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. कल फिर मिलेंगे इसी समय.
वी होप यू हैव अ सुपर्ब संडे. नमस्कार.